ओम शांति। तो आज का विषय है व्यर्थ से मुक्ति और समर्थ स्थिति। तो किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकते हो? किसी को निकाल सकते हो? नहीं। हमने व्यर्थ कैसे लाया नहीं था। हाँ, व्यर्थ आज से 10-15 साल पहले और अब भी मैं देख लो आप, तो व्यर्थ हमने जमा किया है। पहले जैसे बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो माँ बाप को कोई चिंता नहीं है। अगर आज बच्चा अगर स्कूल में जाता है, 5 मिनट लेट हो गया, तो माँ के मन में संकल्प चलता है कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं अपहरण तो नहीं हुआ। क्यों? पहले और अभी, अब हम टीवी में सुनते हैं, मोबाइल में देखते हैं, तो गलत इन्फॉर्मेशन बहुत हमने अपने अंदर भरे हुए हैं। तो व्यर्थ कहां से चल रहा है? व्यर्थ का कारण क्या है? जो हम मोबाइल के द्वारा, आप देख लो क्या क्या दुनिया के चीजें हैं, इन्फॉर्मेशन है, पिक्चर है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सारा देख रहे हैं, वो कहीं जाता नहीं है। एक एक सेकंड अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। इन आंखों से जो देखते हो, मुख से जो बोलते हो, हाथों से जो करते हो, शरीर में जब आत्मा ने प्रवेश किया, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड कोई देखता नहीं, ना भगवान देखता है, ना कोई देखता नहीं, हर सेकंड अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। और वो ऐसे नहीं रहता है, फिर वो सपनों के रूप में आता है, मन में विचार के रूप में आता है, कर्मों में ये ऐसे गुस्सा करता है, ऐसे मुझे भी करना चाहिए, ये एक बोलेगा तो 4 बोलते, ऐसे मुझे भी करना चाहिए, ये ऐसे कपड़े पहनते, ऐसे मुझे भी करना चाहिए। जो देखा वो आचरण में आता है, वो बोल में आता है, वो कर्मों में आता है, वो विचार में आता है, वो सपनों में आता है। तो योग में जब बैठते हो, फिर आप माया रावण शब्द देते हो। ये माया रावण कैसे? नहीं, हमने देखा, हमने सुना, हमने किया हुआ कर्म अंदर भरा हुआ है। तो इसका दोषी कौन? व्यर्थ कैसे आया? नहीं है, हमने भरा है, तो हम जिम्मेवार है। अगर इससे मुक्ति चाहते, इसको निकाल नहीं सकते आप एकदम, तो इससे मुक्ति चाहने के लिए हर चीज की सब्स्टिट्यूट है। अगर आपको क्रोध को मिटाओ तो कहां से लाया था? कोई चीज मिटा नहीं सकते, हर चीज का निवारण सब्स्टिट्यूट, इसके जगह पर ये करो तो वो जाएगा, तो वो जानना चाहिए। तो अभी तो अंदर है, उसको मिटाने जाओ इतना संभव नहीं है, इतना हमारा योग, इतना ज्ञान, ये संभव नहीं है। तो अभी आज से क्या कर सकते हैं हम? व्यर्थ से मुक्त होना चाहते हो? एक, सबसे पहले आज मन को, दिल को, बुद्धि को मैला करने वाली चीज क्या है? साइंस ने हमको एक बंदर दिया, लेकिन उस बंदर को भी समय पर यूज करो। खराब चीज नहीं है, अच्छी है, लेकिन उसका मिसयूज करते हो तो 1 का 100 गुना दुख मिलता है। तो इसके लिए जो मोबाइल दिया है उसके अंदर YouTube बहुत कम यूज करो, नहीं करेगा तो बहुत अच्छा। जो बाबा के पक्के ज्ञानी योगी, जो बाबा ने आज 2-3 दिन से करे, कर्मातीत बनो, समय से पहले विकर्म विनाश करो, याद करो, 8 घंटा याद करो, कहता है 1 घंटा भी नहीं होता है, 1 घंटा 8 घंटा कहां? बाबा बाप क्या चाहता है, हम कहां हैं? तो ये सब हो सकता है, कठिन नहीं है, लेकिन व्यवस्था कुछ करने के बिगैर कुछ हो नहीं सकता है। कि इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, क्या है, खेती में 1 बीज बोलो तो 10-50 दाना लगेंगे। अगर बिना बोए हुए कुछ उग जाए, ये संभव नहीं है, असंभव चीज है। आप कहेंगे मेरे पास बीज ही नहीं है, मैं क्या बोऊं? तो किसको बोलेंगे आप? तकदीर को, और किसी को नहीं। कोई कुछ नहीं कर सकता है। विधान ये, कुछ करो, हिम्मत का 1 कदम रखो, आज भी बाबा ने देखो मुरली में बहुत अच्छी बात सुनाई, एक सारी मुरली के अंदर विशेष, हमारे जीवन में आलस अलबेलापन ये सब आने का कारण, आज बाबा ने क्या कहा, बच्चे ड्रामा का ज्ञान जानते हो, ड्रामा फिक्स है यही होने वाला जानते हो, मानते भी हो, फिर भी पुरुषार्थ करो। क्यों? इसको कहा ड्रामा का गुयराज, जानते यही होने वाला है, फिर भी मार्जिन है, अगर आप हिम्मत रख के कुछ करेंगे तो आगे पीछे हो सकता है, मार्जिन है, नहीं ड्रामा फिक्स है, कुछ हो ही नहीं सकता है, सो जाओ, हम कुछ भी करेंगे तो वही होने वाला है, तो ये अलबेला बनाता है, पुरुषार्थहीन हो जाता है, आलस्य आ जाता है। तो इस ड्रामा के अंदर चांस है, आगे पीछे हो सकता है, कुछ कर सकते हो। तब बाबा ने आज ये कहा कि कुछ हो जाने के बाद कहो ड्रामा, पहले शब्द यूज नहीं करना। तो पुरुषार्थ करने का मार्जिन है, मेहनत करने का मार्जिन है, कुछ करेंगे तो कुछ पा सकते हो। तब बाबा ने कहा 8 घंटा याद करो। अभी आप सोचो 8 घंटा कैसे होगा, हाँ उसका भी प्लान है, हो सकता है, कोई भी चीज असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग करना, सुनने के बाद प्लान करना है, सोचना है। तो बाबा ने ये जुगास इसलिए कहते इंग्लिश में, दुनिया में भी लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, बहुत कुछ पढ़ लिया आपने कोई फायदा नहीं, बहुत कुछ सुन लिया कोई फायदा नहीं है, सुनना पढ़ने के बाद कुछ समझ में आया वो आचरण में आया, समझा कुछ भी नहीं, बहुत मुरली सुनी बहुत कुछ किया लेकिन आचरण में अभी तक कुछ आया ही नहीं है। सारी मुरली के अंदर एक ही भगवान का एक ही बूंद ले लो बस, तो उसका चिंतन करो, ये कैसे करो मैं, प्लानिंग करो, चिंतन करो प्लानिंग करो, फिर आचरण में आएगा। तो हमारे स्वभाव संस्कार कर्म परिवर्तन होंगे, सिर्फ सुन लिया लिख लिया कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए लिस्निंग रीडिंग इंफॉर्मेशन, इसलिए यहां तो व्यर्थ को खत्म करते करना चाहते हो निवारण, 2-3 चीजें हैं। एक, यूट्यूब को जितना कम यूज करना चाहते हो उतना करो, एकदम खत्म करो तो संभव नहीं, एकदम ब्रेक लगेगा तो टूट जाएगा कोई चीज, कोशिश करना प्रयत्न, समझ से क्यों, इसके अंदर यूट्यूब खोलते पहले नेगेटिव चीज आता है, सही है ये कि गलत, न्यूज सुनने जाओ आप पहले नेगेटिव चीज देता है, हम न चाहते हुए दुनिया का गलत चीज भर रहे, क्या जरूरी है? आप पूछेंगे भाई जी अच्छे क्लास अच्छे ज्ञान अच्छे कुछ चाहिए, हाँ वो मिलेगा, उसका निवारण है। देखो ईश्वरीय ऑडियो लाइब्रेरी करके एक ऐप है, तो उसके अंदर ज्ञान सरोवर में जो मुरली चली, जो क्लास चला, जो डायरेक्शन चला, पांडव भवन में जो मुरली चली, जो क्लास चला, जो डायरेक्शन, शांतिवन में आज जो मुरली चली, जो क्लासेस चले, जो डायरेक्शन निकला, वो सब कुछ आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको बाबा के घर से ज्ञान चाहिए कि दुनिया का ज्ञान चाहिए, वो निर्णय आप करो। दुनिया का ज्ञान सुन करके हमारी अवस्था क्या होगी, इतने समय रामायण महाभारत गीता मंदिर में गए, पूजा किया, क्या 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 हुआ, कुछ चढ़ती कला हुई, कुछ परिवर्तन हुआ कि नीचे ही आए, और अभी भी वही करना चाहते हो, दुनिया का चीज सुनना चाहते हो कि बाबा का ज्ञान चाहिए, तो ये निर्णय करना आपको। तो अगर बाबा का ही ज्ञान चाहिए तो बाबा के घर से मिल रहा है, रोज की तीनों जगह की मुरली मिलती है आपको, तीनों जगह पर आज जो 1 घंटे के अंदर ही क्लास मिलता है, क्या डायरेक्शन चला बाबा के घर से डायरेक्शन वो भी मिलता है, वो छोड़कर और दुनिया का कुछ भी देने दो, वो सोने का मृग है चमकता है बहुत अच्छा लगता है, तो वो देखकर टू मैनी कुक स्पॉइल द पॉट, जो व्यर्थ कहा, तो ये क्यों ये क्या, इन्होंने ऐसे कहा उन्होंने ऐसे कहा, ये सब मन को दिल को कंफ्यूज करता है। क्यों कंफ्यूज कराते हो, क्यों अपने को उलझन में जाते हो, फिर कहेंगे योग नहीं लग रहा, कैसे लगेगा, इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, कहेंगे ना, जितना मुख उतनी बात है। तो हमको कम से कम बाबा के घर में सब मिल रहा है, और विधि है बाबा के घर में, स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सिटी है ये। तो वो समझदार व्यक्ति जब कुछ सुनाता है उसके अंदर कुछ दम होता है। ऐसे कोई कुछ भी बोलते, आपने सुना, फिर आप पूछेंगे भाई जी उन्होंने ऐसे कहा इन्होंने, हाँ वो कहेंगे ना, सुनाने वाला कौन। जैसे आप दुनिया में जाओ, रस्ते पर जो गाड़ी लेकर के सस्ते में चीज देते हैं, आप कहेंगे बहुत अच्छा ले लो, चमकता भी है वो, कल खराब हो गया किसको पूछेंगे, वो तो है ही नहीं उधर, चला गया वो। अगर परमानेंट दुकान में जाओ और कुछ लिया, कल खराब हो गया, कल उनको जाके पूछ सकते हैं, आपकी चीज देख लो खराब, तो यहां किसको पूछेंगे। ये चलते फिरते बहुत कुछ मिल रहा है ना, तो व्यर्थ कहां से आ रहा है, उसको पहले बंद करो, फिर उसको अगर व्यर्थ चलता है। और दूसरा, हमारा आज समय खाली है, बहुत समय खाली जाता है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, इधर से किचन में जा रहे हो, तो खाली, कोई काम नहीं मन बुद्धि को, कौन आया कौन गया, इधर उधर देखते रहेंगे। अगर ज्ञान सुना यहां से, यहां से बाहर जाते हो किचन तक, तो आज क्या सुनाया था, इसका अर्थ क्या है। दो बहनें हैं, आज देखो उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, बात भी करो, नहीं करना ऐसे नहीं, लेकिन ज्ञान की बात करो, जो सुना उसका वर्णन चिंतन करो। अकेले हो, जो सुना क्लास मुरली उसका आज ये क्या कहा, तो आप मन को काम देंगे, आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप कहा। और दूसरा भी है, खाली बुद्धि दुनिया में तो एक ही है, यहां आने के बाद, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद दो शक्तियां हैं, बुद्धि भी है, बुद्धि भी सोचती है, ये दुनिया में ज्ञान नहीं है बुद्धि का। तब माताएं मंदिर में जाते, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, हमारे पास बुद्धि का ज्ञान नहीं है। साइंस ने पढ़ाया कॉन्सियस एंड सबकॉन्सियस, बुद्धि कहां है, वो भगवान देगा। तब भगवान आया है तीसरा नेत्र देने के लिए। तब अर्जुन को भी देखो, युद्ध गीता में भी 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं हुआ, अंत में कहा है अर्जुन आपको मैं दिव्य दृष्टि देता, दिव्य बुद्धि देता हूं। तो बुद्धि के बिगर समझ में नहीं आता है, तो बुद्धि चाहिए। तो भगवान आकर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बुद्धि का ज्ञान देता है। तो सुनने के बाद, बुद्धि सुनने के बाद मन सुनता है, बुद्धि ध्यान से सुनो का, ध्यान मना बुद्धि ग्रहण करती है, क्या सुना लिखो, दो तीन शब्द मुरली से भी, सारी मुरली नहीं चाहिए, एक दो तीन पॉइंट, ज्ञान भी क्लास सुनते हो, और सारे क्लास में एक शब्द कोई ले लो, क्या करना चाहिए, दो तीन नोट करो, प्लानिंग करो, यहां से चलते समय विचार करो, सोचो तो ये कैसे करूं मैं, क्या ये हो सकता है, सुनाने वालों को क्या कुछ भी सुना दो, क्या खर्चा समय निकालना है, क्या हम कर सकते हैं, उन्होंने कहा इसलिए करना चाहिए नहीं, पूछ लो। खाना खिलाने वाले बहुत कुछ दे रहे, आपको देखना क्या ये खाना मैंने खाया तो हजम होगा, ये खाने से क्या होगा तकलीफ, तो आपको हजम तो आपको करना है ना, तो देख के सोच समझ करके सुनाने लो, बहुत सुनाएंगे, आप सोचो क्या मैं ये कर सकता हूं, करना चाहते हो तो उसको नोट करो, उसका प्लानिंग करो, उसके लिए सोचो। तो एक प्लान कहा कि यूट्यूब को बंद कम करो, दूसरा कहा कि आप मुरली सुनते हो, क्लास सुनते हो, घर में बाजी, घर में जाने के बाद भी मुरली से भी रोज सारी मुरली से एक शब्द ले लो, दो भी नहीं चाहिए, जो आपको अच्छा लगा, वरदान ही लेना चाहिए, स्लोगन ही लेना चाहिए, नहीं, जो आप करना चाहते हो अच्छा लगे, ये करना चाहिए तो वो नोट करना, उसका चिंतन करो, उसका प्लानिंग करो, ये कैसे करो, उसका वर्णन करो, औरों को भी सुनाते हो सवेरे शाम तक, तब व्यर्थ को कम कर सकते हो। तीसरा, आपके साथ असंगति संग दोषा कहा, ऐसा संग देख दो रखो जो आपको ज्ञान के बाद अच्छी बातें सुनाता है। अरे इधर लड़ाई हुआ, मुझे ये बीमारी हो गई, उसने ऐसा कहा, पर चिंतन इधर उधर की बातें कोई करता है, पॉलिटिक्स की, दुनिया की, उनसे थोड़ा दूर रहो। उन्होंने सोचा एक कचरे का डब्बा अच्छा है, इसमें सारा दुनिया का कचरा डाल दो। तो हम कचरा कहां से जमा कर रहे हैं? तो संगति संग दोषः। हाँ पता नहीं चलता भाई जी अच्छा लगता है तो एक डब्बा फंस जाता है, तो वो क्या सुनाता है? पॉलिटिक्स की बात करता है, दुनिया की बात करता है, इधर उधर की बात करता है, पर चिंतन की करता है। दूसरी दफा फोन किया तो उठाना नहीं, बहुत बिजी हूं, अगर टाइम लिया मिलना चाहता हूं अभी नहीं, पांच मिनट के बाद में आना, अपने को किनारा कर लो। अगर वो इधर से आ रहा है इस रास्ते से जाओ, अपने को बचाओ, उसको दोष नहीं दो तो उसका धर्म कर्म अलग है, अपने को बचाओ। उसको बाबा ने आज मुरली में कहा कि कोई दोषी नहीं है, ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन दोष उसका नहीं है, अपने को बचाओ, उसका धर्म कर्म वो है, उसका ड्रामा में पार्ट वो करेगा, आप नहीं चाहते हो, प्रोटेक्ट यूर सेल्फ, अपने को बचाओ, उसको परिवर्तन करने नहीं जाओ। अगर वो करना चाहते हो उसकी भी विधि दो दिन पहले बताया था, दूसरों को परिवर्तन कर सकते हो, उसकी विधि बताया बाबा ने कल या परसों, क्या बताया? किसी ने ध्यान दिया? नाम ही दिया। और दूसरों को परिवर्तन करना चाहते हो तो उसके लिए क्या कहा? कल ही सुना। और बताओ कि तो मुरली पर कितना ध्यान है, क्योंकि ऐसी चीज अंदर अपनाना चाहिए। हम चाहते हैं संसार में बच्चे, पति, भाई, बहन ऐसे करते वैसे करते, बहुत समस्या है संसार घर में, उनको परिवर्तन करने के बाबा ने विधि बताया, उसका चिंतन करो, प्लानिंग करो। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प से सहन करने की जो शक्ति है, तो दृढ़ सहन करने में दृढ़ संकल्प चाहिए, तो आप औरों को परिवर्तन कर सकते हो। इसका अर्थ ऐसे समझ में नहीं आएगा, सोचो अगर बहन जी बार बार गुस्सा कर, बार बार गलत करती, वो करेंगी, मुझे सहन करना है, इसमें दृढ़ रहो, मुझे एक दिन नहीं सारा जीवन चुप रहना है, दृढ़ रहो, पक्का रहो। अरे मैंने इतना करने के बाद एक महीना, दो महीना, छह महीने का इनको रियलाइज होगा कि मैं कुछ भी कर रहे कुछ बोलते नहीं है, चुप रहता है, सहन करता है, तो उसको रियलाइज करके उसको परिवर्तन करना अपने आप। आप जितना दृढ़ होते हो, जितना सहन करने में दृढ़ रहते हो, उतना वो परिवर्तन होगा, आपके वाइब्रेशन से, शुभ भावना से, सकाश से कुछ नहीं होने वाला है। वो पावर किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसका अपना संस्कार है, उसको अपने आप मिटाना है। अगर आपके पास सकाश से, मनसा सेवा से दूसरों का संस्कार परिवर्तन कर सकते हो, दूसरों का कर्म भोग मिटा सकते हो, ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने कहा ये खासी तुम्हारी है, तुमको भोगना, मैं तुम्हारे शरीर में आता हूं, उसका भाड़ा दूंगा, लेकिन तुम्हारी खासी मैं नहीं मिटाऊंगा, वो तुम्हारा कर्म भोग है, तुमको मिटाना है। नहीं तो भगवान किसी के हिसाब किताब में नहीं आता है, वो तुम्हारा कर्मों का फल तुमको ही मिटाना है, कोई उसको मिटा नहीं सकता है, चाहे लाख करो चतुराई। अब हम सकाश शुभ भावना से अपने को बचाते हैं, इनका प्रभाव मेरे पर ना आ जाए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, हमारे ऊपर उसका कोई असर ना हो। जिसने जो कर्म किया उसी को ही मिटाना है, तो कर्मों की गुई गति को जानना है। बाबा तो बाबा ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं बच्चे, तुम्हारे कर्म, हां अगर मैं सहन करता हूं, सहन करने में दृढ़ता चाहिए, कितना दिन करो? तब बाबा ने अपना अनुभव बताया था कि देखो देखो बच्चों ने, नारायण दादा बेटा छोड़ के गया, परिवार वालों से भी इंसल्ट हुआ, बदनामी हुई, गांव वालों से भी हुआ, शहरों न्यूज़पेपर वालों ने भी, सबने बदनाम किया, तो भी सब मेरे मित्र है, मेरे बच्चे हैं, सहन किया। तो इसके लिए अगर हम सहन करने में दृढ़ रहे, नहीं तो हम सहन करते चुप रहते हैं, मन में तूफान चलता है, तो वो सहन किया नहीं है। मन में उस आत्मा के प्रति शुभ संकल्प, बाबा इनका मेरा कुछ ऋण होगा, तभी ये गुस्सा करते, क्यों करते मेरे से, मुझे ही परेशान क्यों करते हैं, नहीं तो दुनिया को सबको करना चाहिए, मेरा कुछ हिसाब किताब होगा, वो मुझे यहां खत्म करना है, अगर मैंने एक शब्द बोला 5000 साल के लिए, फिर से मैंने हिसाब किताब बना दिया, तो हिसाब किताब मिटाने आए हो कि बनाने आए हो? नहीं, उन्होंने 100 दफा बोला, मैंने 1 ही दफा बोला, 1 ही बूंद तेल का डाल दिया, तो क्या हुआ, आग बुझ गई? 5000 साल के लिए फिर से मैंने हिसाब किताब बनाया। ये कर्मों की गुह्य गति, ये समझ में अगर अच्छी तरह से आता है तो हमारे अंदर एक पावर आता, नहीं चाहे कुछ भी हो मुझे सहन करना है, उसमें दृढ़ चुप रहना है। और किसने मुझे कहा? शिव बाबा ने कहा। बाबा को बताओ, बाबा आपने कहा सहन करो? बाबा ने कहा मैं देख लूंगा, मैं बैठा हूं। मैंने कहा मेरे श्रीमत पर रहो तो मेरी जिम्मेवारी है, अगर कुछ गलत भी हुआ तो मैं सुलझा दूंगा, मैं ठीक करूंगा। कल अगर कुछ गलत दिखाई दिया आप बाबा को कह सकते हो, बाबा का भी कान पकड़ सकते हो, बाबा आपने कहा था, देख लो अभी क्या हुआ। बाबा को भी बोलने के लिए वाला चाहिए ना, आपने कहा था, नहीं तो आपको खाएगा। देखो आपने कहा मैंने माना नहीं तो आपको खाएगा, है ना, इनर कॉन्शियस इज बाइटिंग। आप भगवान के सामने आंखें खोल के खड़े नहीं हो सकते हो, देख नहीं सकते हो, दृष्टि नहीं ले सकते हो कि हमने उनका श्रीमत नहीं माना। अगर श्रीमत मानने के बाद आंखें खोल के और दृष्टि देके बता सकते हो, बाबा आपने कहा था, देखो ऐसा हुआ, तो आपका सिर झुकना नहीं पड़ेगा। हिम्मत से बाबा को भी बता सकेंगे, आप भगवान के सामने भी खड़े हो सकेंगे, तो कहा ऐसे हिम्मत का काम करो। और बाबा ने कहा बच्चे कुछ हो जाए, मैंने कहा मैं जिम्मेवार हूं, मैं सुलझाऊंगा, आज नहीं तो कल। भक्त कहते हैं भगवान के घर में अंधेर नहीं है, देरी है सिर्फ। हिस्सा देखो, द्रौपदी को महाभारत में देख लो, भगवान को पता था तो पहले वो साड़ी देता, पहले रोकता था नहीं, द्रौपदी दुशासन साड़ी खींच रहा है और भगवान इधर से मदद करता है द्रौपदी को, तो दुशासन को रोक सकते थे ना, नहीं उसको रोका नहीं, तुम अपना काम करते रहो, वो गलत करता रहता है तो उसको रोका नहीं। गलत कर्म करने वालों को भी भगवान रोक नहीं सकता है, ये भी जानना। और अपना आपने बुलाया तो आपको मदद भी करता है, और वो पहले करता था नहीं। तो ये सब ज्ञान जो सुनते हो शास्त्रों में भी, उससे समझना। मुरली में बाबा जी का बताता है, उसको भी चिंतन करो, ये क्या ये क्या। तो भगवान आया तो श्री कृष्ण आया तो साड़ी दे रहा तो उसको रोक लो ना, दुशासन को रोका, क्यों नहीं रोका? तो भगवान के पास शक्ति नहीं थी गलत करने वाले को रोकना? नहीं, आप तो कहते हो बाबा ये बहुत गुस्सा करते इसको रोक लो, हम कहते हैं ना रोज बाबा इसको ठीक करो, तो ये कहा। तो इसलिए सीखना है, अपने को सिखाओ कि दृढ़ रहो सहन करने में, आपकी सहन शक्ति ही औरों को परिवर्तन करेंगे, क्योंकि आप चुप रहे वो देखता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना मैं इतना कुछ कर रहा कुछ नहीं बोल रहे हैं, और उनके द्वारा मुझे अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो वो बाबा को, तो बाबा ये आपका बच्चा है, मेरा पति मेरा बच्चा मेरा भाई मेरा परिवार नहीं, बाबा आपका बच्चा, आपने कहा। तो भगवान पर अगर विश्वास है तो उसकी बात मानते हो तो सहन करने में दृढ़ता, तो परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आया? तो एक एक ज्ञान के पॉइंट्स को चिंतन मंथन करो। ऐसे ये क्या है पूछेंगे आप, कि अगर आप सुनेंगे रामायण में आता है राम जब वनवास में गया, जाते समय साधु संन्यासियों ने उनको बहुत वरदान दिया, अस्त्र दिया, हे राम आपके जीवन में बहुत समस्या आएंगी, ये अस्त्र ले लो ये अस्त्र ले लो। अंत में एक दिन ऐसा आया कि सारे अस्त्र खत्म हो जाता है, तो क्या करूं? तब ऊपर से आकाशवाणी होती, हे राम आपके पास ये अस्त्र है छोड़ दो, वो छोड़ते सब मूर्छित हो जाते हैं, ये आपके और हमारी यादगार है। जो बाबा रोज ऐसे मुरली के पॉइंट बताता है वो चिंतन करके वरदान है, ये चिंतन मंथन करके आप जमा करके रखते हो, ये अस्त्र है। आज के 10 साल के बाद कहीं आपके जीवन में समस्या आएंगी, अब बाबा क्या करो? बाबा ऊपर से, बाबा माना शक्ति है, ज्ञान में सुनाएगा उस समय, निराकार शक्ति देता है, रिकॉर्डिंग इधर भरा हुआ है, करंट दिया, हाँ अरे ये अस्त्र है, ये अस्त्र यूज करो। अगर अंदर भरा नहीं है, करंट देता है, टचिंग देता है, तो कुछ निकलेगा? अंदर कुछ नहीं, सीढ़ी खाली है। अगर सीढ़ी के अंदर कुछ भरा है तो करंट देते, अंदर जो है वो बाहर आएगा। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान ये अविनाशी खजाना है, रोज एक एक पॉइंट ले लो, चिंतन मंथन करके जमा करो, आज काम नहीं आएगा, 10 साल के बाद। उस दिन बाबा ने ये कहा था, ऐसी परिस्थिति आई, ये अस्त्र है, ये शस्त्र है, ये साधारण ज्ञान नहीं है, तो ये जमा करो, सारे कलप में काम में आएगा। बाबा का टचिंग अर्थात शक्ति देता है, वो ज्ञान सुनाने के शरीर नहीं है, आवाज नहीं आएगा। उत्तर दुनिया में कहा कि क्या किया, आकाशवाणी कौन सी, किसने बोला, कौन बोल रहा था? तो ये आज हमारी यादगार है, समय पर आपको टचिंग मिलते हैं। बच्चे ये करो, अगर ज्ञान के पॉइंट्स अंदर जमा करो तो वो जागृत होंगे। तो इस किले का व्यर्थ को समाप्त करना चाहते हो, बहुत नहीं, एक बूंद बस, भगवान का इतना समय नहीं है, तो एक एक बूंद रोज करो, 30 दिन में 30 बूंद आपके जीवन में आएंगे। चिंतन करो, वर्णन, और उसकी तरीका भी है, वो एक बूंद सवेरे से रात तक बार बार अपने को पढ़ाओ, आज बाबा ने क्या कहा मुझको, आज बाबा ने मुझे क्या कहा। समय नहीं है, खाना खाते समय 3 दफा खाना खाते हो, खाना सामने, आज मुझे बाबा ने क्या कहा था याद, ये बाबा की याद करके खाना खा लो, 3 दफा तो कर सकते हो। फिर सारे दिन में कोई भी मिले उनको भी जरूर सुनाना, सवेरे दिन में ज्ञान दान भी करो, तब संस्कार बनेगा। व्यर्थ को मिटाना चाहते हो, ये एक आदत डालो, इसमें कोई तकलीफ है? व्यर्थ की मुक्ति अपने आप नहीं होगी, 3 तरीके हो गए है ना। फिर भी आप कहते हैं, अब आया दूसरा एक व्यर्थ इधर आता है, मन को योग किया आपने, अभी आप योग में बैठे तो बुद्धि के अंदर पुरानी गलत बातें याद आती है, तो क्या करेंगे? अगर ये भाई गलत करता है तो उसको मां बताती है, बच्चे बताते हैं, स्कूल में टीचर कहेंगे चुप बैठो। मन गलत सोचता है तो समझा सकते हो, आप मन को फुल स्टॉप लगा सकते हो। अगर बुद्धि के अंदर ही गलत चीज आया तो उसको कौन कौन ठीक करेगा, कोई है उसका बताओ? याद आए, स्मृति है ना, इधर बैठे बैठे क्लास में बैठे योग करते करते पुरानी कोई बात आ गई तो उसको कौन ठीक करेगा? कहां आती है वो, मन में नहीं आती है, स्मृति बुद्धि में आती है, तो उसको कौन ठीक करेगा? इंद्र देवता बताओ, इंद्र देवता नाराज हो गया, बरसात ही नहीं आ रही, देख लो राजस्थान में इंद्र देवता इधर बैठा है ज्ञान सरोवर में। स्मृति दो कर सकेगा, दो चाहे ना, राइट हैंड लेफ्ट को मारेगा ना, मां बच्चों को सुनाएंगे, टीचर स्टूडेंट को बताएगा। अगर मन में आया तो आप बता, बुद्धि कहेंगी कल बाबा ने कहा था ऐसा नहीं सोचना इनको देखकर। अगर बुद्धि के अंदर ही आया तो बुद्धि को कौन सुनाएगा? स्मृति बुद्धि में आती है ना, आप इधर बैठे क्लास सुनते सुनते कुछ पुरानी बात को याद आई, वो याद बुद्धि में आती है, उस समय आप कुछ नहीं कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट चला उसके बाद, अरे मैं क्या सोच रहा हूं योग में आधा घंटे के बाद, वो बुद्धि, वो देखना पड़ता है कहां आया है, उसको कौन ठीक करेगा? किसी के पास जवाब, टन्ना बताएंगे, टन्ना के पास जगह बहुत होता है ना, 1 टन 5 टन 10 टन, हाँ बताओ कितना खजाना जमा किया, बाबा ने कहा कितना जमा किया हुआ है? नहीं, मन तो नहीं आता ना, तो ज्ञान ना, मन पढ़ा नहीं सकता है, वजीर पढ़ा नहीं सकता राजा को, मालिक बुद्धि है, ये वजीर है, मालिक मन, बुद्धि मन को पढ़ाती है कि उसके पास पावर है। बुद्धि के अंदर अगर स्मृति आई उसको कौन, ये बहुत क्रिटिकल सोचने लायक है, क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं है बुद्धि के अंदर आता है, अभी हम मन ही दोष देते हैं, मन को ही दोष, मन चंचल है, मन खराब है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद पता चला, अभी हम योग में बैठे अच्छी तरह से ये इनकी याद क्यों आई 10 साल पहले, और ये याद है बुद्धि में आई, इसलिए बाबा ने शब्द का याद मुझे करो, इनकी उनकी क्यों आई, तो उसको कौन ठीक करेगा, तो 5-10 मिनट चलता है। उसके लिए हमने सोचा, मैंने अपने जीवन में देखा 2 नियम है, एक योग में बैठे बैठे गलत विचार आया आप कुछ नहीं कर सकते, उठ के जाओ, जाके 2 मिनट चक्कर लगा के आओ, एक चेंज जगह चेंज करो, दूसरा अगर घर में कुछ नहीं कर सकते हैं कहीं जा नहीं सकते तो अच्छे गीत हो अच्छे गीत सुनो, वो भी नहीं हो सकता तुरंत किसी से बात करने लग जाओ फोन उठाकर। ये 3 ही सॉल्यूशन, 3 में से 2 पावरफुल है, एक उठ के चले जाओ स्थान चेंज करो, एक किसी से बात करने लगाओ, गीत सुनने से भी वो रुकता नहीं है, बुद्धि सुनती नहीं है, उसके प्रभाव है। तो ये फिर भी कोशिश कर सकते हैं तो देखना चाहिए बुद्धि के अंदर, स्मृति लब्धा का नष्ट मुआ, मोह जो आता है वो स्मृति के अंदर आता है मन में नहीं, स्मृति लब्धा स्मृति को एक करो नष्ट मुआ, स्मृति के अंदर वो आना चाहिए। चित्त का विरोध गीता इसमें भी कहा, दुनिया में भी कहते हैं चित्त का विरोध, चित्त बुद्धि, चित्त की वृत्ति, तब बाबा ने कहा वृत्ति से वाइब्रेशंस फैलते हैं, वृत्ति बुद्धि, बुद्धि के अंदर चलता चलता, अभी इधर बैठे बैठे सुनते सुनते अरे मुझे ये करना था वो करना, सुन भी रहे हो, बुद्धि के अंदर कुछ प्लान अंडर करंट, उसको वृत्ति कहते हैं, बुद्धि जो चलती है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये दुनिया में ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद दिया कि बुद्धि भी कुछ सोचती है। तब बाबा ने कहा बुद्धि मेरे से लगाओ, तब कठिन है ये, योग में बैठते ही बुद्धि के अंदर कौन कौन याद आते हैं, देखो कितने लोग याद आते हैं, उसको आपने रावण माया कहा कारण, तो योग करने की विधि आज भी बाबा ने मुरली में कहा, क्या कहा विधि, आत्मा समझ फिर मुझे याद करो, अगर आपके पास भी मोबाइल है मेरे पास भी है बात करो, नंबर चाहिए, अगर बाबा से बात करना चाहते हो तो कल मुरली में कहा था बच्चे रूरियान करते हैं बाबा सुनता है, फिर आप कहते बाबा रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, बाबा ने कहा मैं रिस्पॉन्ड करता हूं लेकिन बच्चे कैच नहीं कर सकते, क्यों, 3 कारण बताया, हां बुद्धि स्वच्छ नहीं है, कैच करने वाली बुद्धि है, ग्रहण करने वाली बुद्धि है, तो साइंस ने साधन बनाया आवाज कैच कर सकते हो वाइब्रेशंस, तो बाबा कहते उसके कैच करने के लिए स्वच्छ बुद्धि निर्मल बुद्धि चाहिए, तो उसके लिए तरीका बताया, यूट्यूब छोड़ो ज्ञान को याद करो, ये ज्ञान संजीवनी बूटी है, ये बुद्धि को स्वच्छ करता है, वो सुनाना है, इससे बात करो जरूर लेकिन ज्ञान के पॉइंट के अलावा दुनिया के बाद अगर कोई सुनाता है ठीक है बहुत अच्छा है, अपने को किनारा कर लो, अपने को बचाओ, उसको कुछ करने नहीं जाना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रोफेशन है इधर उधर की बात करना, अपने को बचाना, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य अलग है उनका जीवन का लक्ष्य अलग है, तो व्यर्थ क्या चीज है कहां कहां से आती है, तो उसको ये मुख्य 3 बातें हैं, समझ में है व्यर्थ। अब इस समर्थ स्थिति चाहते हो तो समर्थ स्थिति के लिए भी एक ज्ञान और एक चीज आया कि समर्थ माना शक्तिशाली पावरफुल, तो बाबा ने कहा कि आज भी कहा 8 घंटा याद करो, कभी किसी ने सोचा 8 घंटा याद कर सकते हो, बाबा को याद कर सकते हो, करते हो तो क्या याद करेंगे, बहन जी बताएंगे हमको बाबा को याद करना आता नहीं, ज्ञान का चिंतन कर सकता हूं, कर्मयोग कर सकते हो है ना, तो कर्म योग होगा ना, योग तो नहीं हुआ, नहीं तो बाबा को याद नहीं कर सकते, तो वो कर्म योग हो गया, ज्ञान का चिंतन कर रहे हो नहीं, बाबा ने क्या कहा, हाँ बाबा को याद करो, घर को भी अगर याद करो उससे भी कोई फायदा नहीं, कहा विकर्म विनाश नहीं होगा, तो बाप को क्या याद करेंगे, बाप के याद से विकर्म विनाश होगा, घर को याद किया तो भी नहीं, परमधाम को याद करो, परमधाम बिल्कुल शांत शीतल है शक्तिशाली है तो भी कुछ नहीं होगा, कहा तो ये बाबा को क्या याद करेंगे, उसका ज्ञान याद कर सकते हो, जिससे विकर्म विनाश होना कर्मातीत अवस्था चाहिए। तो बाबा की याद क्या है, कौन बताएगा? प्राप्ति है, वो प्राप्ति हो गया ना, बाबा की याद नहीं, वो ज्ञान से बाबा से ये मिला तो वो महिमा हो गए, मुझे प्राप्ति है। तो बाबा को याद, हाँ बाप समान माने तो उसको याद करना पड़ेगा ना। तो वो कौन है बाप? आपका पिताजी के पास, आप कहेंगे ना हमारे पिताजी के पास इतनी जमीन है, इतने कार है, ऐसे बताएंगे ना। तो बाबा आपके पिताजी के पास क्या है? आपका पिताजी को जानते हो, क्या है उसके पास? बाबा का गुण, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, एक क्रिटिकल संकल्प प्रश्न है, कोई स्पष्ट नहीं करता है। तो बाबा का गुण है, बाबा को सर्वशक्तिवान कहा, सर्वगुण संपन्न देवता को कहा, इसलिए पूछ रहा हूं, पता था कि बताएंगे, क्योंकि ज्ञान स्पष्ट नहीं हो रहा, वन वे ट्रांजेक्शन हो रहा, मैं आपने जो आया बताते गया, तो आपके बुद्धि में क्या है वो भी देखना पड़ेगा ना। इसलिए कहा ज्ञान वार्तालाप होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। तो आपने गुण कहा, शिव बाबा गुणवान बताए कभी? सर्वशक्तिवान, ऑल माइटी। तो कौन सी शक्ति है शिव बाबा के पास, कौन सी शक्ति है वो भी नहीं पता है? आ? एक और सर्व का, कौन सी शक्ति है? और हाँ, और माना आप लोग कभी क्लास सुनते नहीं, ऐसा लग रहा है ऑनलाइन में इतने क्लास, कम से कम एक दो सालों से इतना क्लासेस, इतना कहता आप सुने मुरली, आज भी बाबा ने बताया, कल भी सर्वशक्तियां बताया था, आज भी बताया, मैंने सुनते ध्यान नहीं दे। बाबा ने कहा बाप की शक्तियां बताया, बाप कौन है? सबसे पहले बाबा की आठ शक्तियां है, आठ सत्युग की आठ गद्दी होती है, आठ महाराजा बनते हैं। देखो लक्ष्मी के पास धन का देवी है, विद्यानी है, एक सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी, तब का मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा के पास जो शक्ति है उस पर पीएचडी करो, उसके ऊपर अधिकार प्राप्त करो। किस शक्ति पर आपने अधिकार प्राप्त किया? शिव बाबा के पास कौन सी शक्ति है? वो पवित्रता का सागर है, आता है मुरली में है, सही है, बाबा शांति का सागर है, उस पर आपकी पीएचडी है, अधिकार है, शांत स्वरूप हो, पवित्रता के सागर से मास्टर सर्वशक्तिवान हो। कहते हैं सर्वशक्तिवान छोड़ दो, एक के पर पवित्रता आपके पर मास्टरी है, अगर सभी शक्तियों पर है तो मास्टर कहेंगे, सर्व शक्ति कहेंगे। तो एक भी शक्ति को पता ही नहीं है तो मास्टरी कहां? सिर्फ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं कहेंगे तो क्या फायदा? मैं राजा हूं बन जाएगा? तो कुछ करना, प्रैक्टिकल भी चाहिए। तो एक एक शक्ति, बाबा पवित्रता का सागर है, इसलिए पूछा कि बहुत लोगों को शक्ति सर्वशक्तिवान कहते, कौन सी है वो? और मुरली में आता है, देखना, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, फिर दुखहरता सुखकर्ता, मेरे बिगड़ कोई किसी का दुख नहीं मिटा सकता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, साधु संत भूत प्रेत सबसे मुक्ति देता हूं और जीवन मुक्ति में भी देता हूं, सबको मुक्ति में ले जाएगा, बाकी को जीवन मुक्ति, और भाग्य विधाता हूं। दुनिया में भी लोग दान करते हैं और आप भी दान करते हो, दोनों में अंतर है, आप जो दान करते हो जो बाबा की विधि से, एक का पदम गुना प्राप्ति होती है, दुनिया में जो दान करते हैं एक का एक गुना मिलेगा। तो दान करने की, सेवा करने की विधि बताता है, इसलिए भाग्य विधाता का, भाग्य बनाने की विधि अलग है। और आठवां दिव्य बुद्धि दाता है, यह मुख्य आठ शक्तियां है, इसलिए अष्ट रतन गाए हुए, जिन्होंने एक एक ने एक एक शक्ति के ऊपर मास्टरी किया है। तो सत्युग में आठ राजा है, आठ गद्दी है, तो मास्टर एक शक्ति के ऊपर बनो, कम से कम दो शक्ति के ऊपर बनो। जैसे डॉक्टर बन गया, एक सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशलिस्ट है, डेंटिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो एक है लक्ष्मी धन की देवी, एक ही है, एक शक्ति के ऊपर अधिकार प्राप्त किया। तो सर्वशक्ति है बाबा के, सर्वशक्ति में एक तो करो, दो करो, पहले शक्ति को जानो। अब आप पूछेंगे कि ये शक्ति कैसे जमा करूं, तो बाबा कहते हैं निरंतर याद करो। समर्थ का शक्तिशाली चाहिए, समर्थ माना शक्तिशाली, तो वो कैसे करेंगे आप? आज बाबा ने कहा 8 घंटा याद करो, हो सकता है? तो बाबा को बोला बाबा वही नहीं हो सकता, आप ऊपर बैठ के भाषण कर रहे हो, नीचे आओ। पता चला 8 घंटा करो, 1 घंटा भी नहीं हो रहा है, 5 मिनट भी नहीं होता। आज भी वो भी बाबा ने कहा कि बच्चे 2 मिनट भी 1 मिनट भी याद नहीं करते। तो सोच लो, अभी देख लो योग करके देख लो कितना मिनट याद करते हैं। ओम शांति। तो समझ में आया सर्वशक्तियां कौन सी है? पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुखकर्ता सुखकर्ता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता मुख्य है ना। इन 8 शक्तियों को ले जब योग में बैठते हो तो बाबा की याद, इन शक्तियों का चिंतन करते करते उसके साथ जुड़ते हो, नहीं तो जुड़ नहीं सकते, रह नहीं सकते वहां, तो दूसरे 1 सेकंड में नीचे आ जाएंगे। तो जितने समय उस बुद्धि उनके साथ जुड़ी रहती है चिंतन करते करते, तो वो शक्ति काम करती है। जैसे आप इधर बैठे, 2 मिनट बाहर जाओ, सूर्य की किरणें पड़ी, तुरंत आ जाओ, पसीना निकलता नहीं है। कम से कम 5-10 मिनट बैठो वहां, तो सूर्य की किरणें पड़ती है, ये सूर्य शरीर की गंदगी निकालता है, वो सूर्य सर्वशक्तिवान है, वो आत्मा का पसीना निकालता है, लेकिन उसके साथ टिकना चाहिए। तो बहन जी कह रही थी अभी कर्म करते करते भी ये कर सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें परसेंटेज है। तो वो कैसे करेंगे? बाबा ने कहा कर्म करते करते 8 घंटा तो योग में नहीं बैठ सकते हो, सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, 1 घंटा। तो कर्म करते करते कैसे या बाबा को याद करेंगे? तो कर्म योग कहा, कर्मातीत बनेंगे कहा। तो वो कैसे? उसकी विधि चाहिए। तो उसकी विधि भी हमने अपने जीवन में देखा कि सवेरे उठ गए 6 से 7 या 7 बजे, मुरली क्लास में बैठे 7 से 8 मुरली सुन रहे हो, तो देखो कौन सुना रहा है? शिव बाबा की मुरली है। तो बुद्धि के अंदर ये शिव बाबा के, आज बाबा ने कहा बच्चे ऐसे करो कहता है, तो उधर देखो 1 घंटे में 60 मिनट में कितने मिनट मुझे याद रहे शिव बाबा की? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट नोट करो। फिर उसके बाद 8 से 9 नाश्ता कर रहे हो, और कुछ कर रहे हो, तो बाबा की याद में कहा नाश्ता करो, खाना खा लो, कुछ भी कर्म करो, तो देख लो कितना मिनट रहे, 1 मिनट रहे, को अर्जन है। 1-1 घंटे में 1-1 मिनट भी जमा करो, शाम तक आधा घंटा तो होगा, बूंद बूंद मिलकर एकदम 1 घंटा हो नहीं, संभव नहीं है, आदत डालना पड़ेगा। बहुत जन्मों की आदत है, नहीं तो हम रात को चार्ट चेकिंग करते हैं, सारा दिन चला गया, क्या फायदा? तो हर घंटे में चेकिंग करो, हर ये इच्छा नहीं रखना 1 घंटे में 50 मिनट हो, 10 मिनट हो, नहीं, भले 1 ही मिनट हो, 1-1 घंटा खाली भी चला जाएगा, पता ही नहीं चले 1 घंटा कब चला गया, को अर्जन नहीं। नेक्स्ट घंटे में जागृत हो जाओ। तो अगर 1-1 घंटा शक्तियों का चिंतन चाहे, जो सोचते हो व्हाट यू थिंक सो शैल यू बिकम, जो बनेंगे, क्या सोच रहे हो, ज्ञान का चिंतन करते हो, ज्ञानी तो आत्मा बन जाएंगे। तो हमको आज ज्ञान समझ में आया, अभी शक्ति चाहिए, पावरफुल ब्रेक चाहिए। किसी समय कोई कुछ भी कर देता है, कुछ भी बोल देता है, तो एकदम हमारे अंदर संस्कार जागृत हो जाएगा, तुरंत ब्रेक चाहिए। तो ब्रेक योग की शक्ति से आएगा। कई बातें गलत दिखाई देती है, सुनाई देती है, तो तुरंत ब्रेक चाहिए, नहीं ये नहीं सोचना है। तो पावरफुल ब्रेक इस कलयुग अंतिम समय पर जरूरी है। ज्ञान समझ में है, गलत नहीं सोचना चाहिए, पता है, लेकिन ब्रेक लगता नहीं है, क्योंकि आपको पूछ के नहीं आता है गलत चीजें, माया बहुत रॉयल रूप से आती है। तो पावरफुल ब्रेक चाहिए। अभी ज्ञान पूरा समझ में आया, इसलिए बाबा ने ज्ञान सुनाना बंद किया। अभी अभी आप पढ़ो, अभी योग के लिए समय दिया, नहीं तो पहले नौकरी में जाओ, इधर उधर जाओ, बहुत समय चला जाता था, समय नहीं कहते थे, अभी बहुत समय खाली है। 1 घंटा सवेरे आराम से बैठो, देख लो 15-20 आधा घंटा 15 मिनट तो बुद्धि परमधाम में रह सकती है, बाबा के एक एक शक्तियों का चिंतन करते करते एसी में आधा घंटा बैठो एकदम ठंडा होगा ना, तो परमधाम के पवित्र वातावरण है, शक्तिशाली वातावरण है, उसमें अपने को स्थिर करो। बाकी ज्ञान का चिंतन, रूरियान, कॉमेंट्री, ये तो हो गया, ये तो ऑर्डिनरी स्टेज है। पावरफुल, शक्तिशाली क्यों? आज बाबा ने कहा कर्मातीत बनना जरूरी है। क्रोध का अंश भी रह गया तो सत्युग में आ सकेंगे? हाँ आ सकेंगे, नहीं अब थोड़ा तो आ सकेंगे, नहीं अभी आप बताओ। तो मना आप जो इतने बैठे हो तो सत्युग में जाने के किसकी तैयारी है? कल अगर आ जाए पक्का? बेंजी ने हाथ उठाया, गुड, मना हिम्मत वाली है। तो बात क्रोध भी सब मिट गया, आप बताओ क्रोध पर पूरा मुक्ति है? तो फिर थोड़ा सा रह गया तो टिकट में नहीं मिलेगा। तो कोई अर्जन है, आपने हिम्मत रखा तो पुरुषार्थ करो, मुझे मिटाना है इसको। कैसे मिटाएंगे क्रोध को? हाँ तो उसकी भी दवाई चाहिए ना, तो उसकी दवाई पहले दे चुका हूं, फिर भी याद रखो मिटा सकते आप, तो मुझे बताना भाई जी को ये दवाई काम करती कि नहीं है। 10 दिन रोज एक मुरली के पॉइंट नोट कर अपने पास रखो, 3 दफा कम से कम अपने को पढ़ाओ सवेरे दिन में शाम तक, 3-4 लोगों को सुनाना, पढ़ के सुनाओ भले, ये 10 दिन करो, फिर हमको बताना भाई जी क्रोध गया कि नहीं गया। क्रोध करने वाले आएंगे तो ये संजीवनी बूटी है, 1 महीना 2 महीना नहीं चाहिए। तो एक प्रयोग करके देखना कि क्या हम क्रोध को मिटाने की दवाई चाहिए ना, हर चीज की दवाई चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो करके देख लो, सुनने से नहीं होगा। और 1 महीना 2 महीना नहीं, एक ही पॉइंट का, 2 पॉइंट भी नहीं चाहिए, लेकिन 3 दफा कम से कम सवेरे दिन में शाम को कम से कम, क्योंकि बेहोशी में क्रोध आता है, होश चाहिए, जागृत अवस्था चाहिए। तो ये ज्ञान संजीवनी बूटी है, बार बार सुंगाते रहो और औरों को भी दान दे दो, आपको पता इतना नहीं, दूसरों को भी सुनाते रहो, तो संस्कार बनता है, कर्म हो गया। तो ये दोनों शक्ति अगर 10-15 दिन करते हो तो देखना अपने आप जहां से क्रोध आएगा वो अपने आप जाएगा। जाता कि नहीं है बता देना। ये दवाई भीलवाड़ कहां से आए हो? अच्छा भीलवाड़ा में काम करते के देखना। हाँ ठीक है, बताएंगे ना, भूलना नहीं कि आपने ये सबके सामने हाथ उठाया, तो आपको तो पहले सत्युग में जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ हिम्मत चाहिए ना, गुड, समझ में आया। तो एक है शक्तिशाली बनाना चाहते हो, समर्थ स्थिति, पावरफुल योग करो कहते। कैसे पावर बनेगा? अपने आप तो पावर नहीं आएगा ना, पावरफुल योग करो, बोलने से तो नहीं। पावर कौन से? सर्वशक्तियां, उसका ही चिंतन करो। अगर योग में बैठे आज शाम को देखना, आधा घंटा बैठे तो ज्ञान का चिंतन, गुणों का चिंतन, फरिश्ता वो सब करते हो, तो उससे विकर विनाश नहीं होते है। तब बाबा ने कहा आत्मा समझ, मुझे याद करते हो, मेरे शिव बाबा कौन? सर्वशक्तिवान, उसके शक्ति से ही विकर्म विनाश होंगे। बाकी कुछ भी करते रहो विकर्म बनेंगे नहीं, लेकिन पुराने नहीं मिटेंगे। अभी आप कहेंगे भाई जी हमारे अंदर पुराने हिसाब किताब है नहीं, विकर्म है, कैसे पता चला दिखाओ? आप बीमारी है तो कहेंगे ना इनको इतना शुगर है, ये दिखाएंगे ना, दिखा सकते ना डॉक्टर? तो हमारे अंदर पाप आत्मा पुण्य आत्मा कैसे पता चलेगा? मुखड़ा देख ले प्राणी, कौन से देखेंगे? स्वप्न बताते हैं। जब आंखें बंद करके सोते हो तो बाहर का कुछ नहीं है, अंदर क्या है वो दिखाई देता है। कम से कम आप आज से 1 महीने तक 5 विकारों के स्वप्न नहीं आया वो चैलेंज कर सकते हैं। हिम्मत, मैं पवित्र आत्माओं, कर्मातीत आत्माओं, मिनिमम 1 महीना, मैक्सिमम 6 महीना चाहिए, मैक्सिमम। अगर 1 महीना 5 विकारों के स्वप्न नहीं है, मना अंदर की सफाई है, कर्मातीत बनने के कुछ हमको पता भी चलना चाहिए। इस दूध में पानी है कैसे कहते हो? थर्मामीटर है, हर चीज के मापदंड होना चाहिए। कैसे माने हम कहां पहुंचे, हम क्या कर रहे हैं? कर तो रहे हो, अभी ये अंतिम समय आया है, पता नहीं दोबारा मधुबन में पहुंचेंगे कि नहीं, किस समय क्या होगा, जानते हो किस समय क्या होगा किसी को नहीं पता है, समय ऐसे। तो इसके लिए अभी अवस्था चाहिए, थोड़ा सॉलिड पुरुषार्थ करो। जब इधर आए हो, इधर उधर घूमने में इधर उधर न करते हुए आधा घंटा एक घंटा अच्छी तरह से योग में बैठो और बुद्धि परम धाम तक पहुंचना चाहिए। योग अग्नि का, ज्वाला रूप का, कोई कठिन नहीं है। आराम से बैठ के शक्तियों का चिंतन चाहिए, कुछ जाना नहीं, कहीं कुछ नहीं करना है, आंखें खोल के बैठो। पहले 5 मिनट आत्मचिंतन करो, क्योंकि आत्मा समझ, बहन जी तो मुझे दिखाई दे रही है, भाई जी नहीं कहता मैं, लेकिन बहन जी कहते हैं मुझे समझो। कैसे समझो, मैं आत्मा हूं पता है, आत्मा को समझो। कैसे समझो, हाँ मैं कौन, पापात्मा की पुण्यात्मा मैं जानता हूं, आप नहीं जानते हो। बहन जी को दिखाई देती है, बहन जी आपका नाम, आप कहां से आए हो, हाँ बहन जी कौन है, समझ में आया। तो आत्मा को समझो, पूछो, बुद्धि सत्य बोलती है, मैं कौन, वो बताएगा, नहीं मैंने ये कर्म किया है, मेरे अंदर इतना पाप है, मैं देवात्मा हूं, पापात्मा, सब लोग कहते मुझे आप पुण्यात्मा हो, लेकिन मुझे पता है मैं पुण्यात्मा नहीं, आप जानते रहे हो, मैंने जो किया वो मैं जानता हूं। तो अपने दिल से पूछो मैं कौन, वो बताएगा सत्य, बुद्धि बताएंगी, मेरा रूप कैसा है वो बताएगा, मेरे गुण मैं बता, बुद्धि बताएंगी, उससे पूछो। तो स्वरूप बन जाते हो, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गया। फिर शिव बाबा कौन, कहां है वो, परमधाम में। वो क्या कहता है, मेरे जैसे बनो तो मेरे घर में आएंगे। कैसे बनो आपके जैसे, वो पवित्रता का सागर है। बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो बाबा आपके जैसे पवित्र कैसे बनो, आपको तो शरीर ही नहीं है, किसमें पवित्र हो, पवित्रता क्या है, बात करो किसमें मुझे पवित्र बनना है, आप किसमें पवित्र बनना चाहते हो, बनाना चाहते हो मुझको, सोच। पवित्रता के बहुत सारे मूल्य है, ज्ञान है, उसको यूज करो। शरीर स्वच्छ हो, घर स्वच्छ हो, कमरा स्वच्छ हो, खटिया स्वच्छ हो, कपड़े स्वच्छ हो, स्वच्छ पवित्रता की बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है, उसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। न गलत देखना, न सुनना, न बोलना, न खाना, फिर सोचना, पहले स्थूल आओ, कपड़े स्वच्छ, शरीर स्वच्छ, बिस्तरा स्वच्छ, घर के अंदर मक्खी मच्छरी है तो कहेंगे गृहस्थ आश्रम पवित्रता है नहीं, उसकी भी स्वच्छता की सोचो, किस किस में पवित्रता होनी चाहिए। सत्युग में जाने लायक बाप समान पवित्र बना, एक एक शक्ति को गहराई में जाओ, शक्तियों का चिंतन करो, तो शक्तिशाली स्थिति, समर्थ स्थिति बनेगी। और सारे दिन में कर्म करते हुए भी शक्तिशाली स्थिति चाहते हो तो चेकिंग करो कि मैं जो चाहता हूं वो है, हर कदम में चेकिंग करो। एक घंटा मैंने क्या किया, किस स्मृति में था मैं, कोई अर्जन है और किसी में गया, दूसरे घंटा ने अभी मुझे शिव बाबा ने ये कहा था ये याद चाहिए, अब 10-1 मिनट होगा, कोई अर्जन नहीं, एक एक बूंद बूंद एकदम, एक घंटा दो घंटा नहीं होता है, आदत नहीं हमारे अंदर, तो ये बूंद बूंद इकट्ठा करो। तब बाबा कहता है हर कदम मुझे साकल का था, साथ रखो, कंबाइंड रखो का आज भी कहा, जैसे शरीर और आत्मा, 1 सेकंड आत्मा अलग होती है, हो सकती है नहीं, दोनों साथ है, 1 सेकंड भी अलग नहीं, तो बाप को कैसे साथ रखेंगे आप, वो तो परमधाम में है। तो ये उसका चिंतन, उसकी शक्तियों का चिंतन, तो सर्वशक्तिवान है वो, जिसके सोच रहे हो वो आपके साथ है। समझ में आया क्या, कैसे बाप को साथ रखना है, तो शक्तिशाली स्थिति कैसे होंगी, क्योंकि आज शक्ति चाहिए। ज्ञान समझ में आया, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन सामने वाला कर रहा है तो एकदम ब्रेक लगे, पावर चाहिए ब्रेक लगाने के लिए, तो ये समर्थ स्थिति, तो शक्ति चाहिए। और व्यर्थ को समाप्त करना चाहते हो तो व्यर्थ के लिए 3-4 बातों का ध्यान नहीं देंगे तो क्या देखना चाहिए, क्या सुनना, अगर कुछ गलत देख भी लिया, सुन भी लिया, वर्णन नहीं करो, औरों को नहीं बताना, नहीं इनको बताओ, इनको बताओ ना चाहिए क्या करते हैं, नहीं दूसरों को बताना नहीं, तो वो समाने की शक्ति चाहिए, शांत चुप रहे, समाना अंदर कहते हैं हम, लेकिन निकलता आदत बनी है, एकदम नहीं होगा, अटेंशन चाहिए। तो व्यर्थ कहां से आता है? तो व्यर्थ फैलाते हम, व्यर्थ देखते हैं, टीवी में मोबाइल में गलत चीजें दिखाई देती है और वही आकर्षित करती है, वह बूंद बूंद एक एक चित्र अंदर बैठता है जाता है। तो योग में बैठे, नींद रात को नींद नहीं आ रही है, गलत विचार गलतियां आने का कारण हम भर रहे हैं, उसमें ध्यान नहीं जाता है, पता ही नहीं मोबाइल देखने से क्या होगा, ऐसे सोचते, पता नहीं एक एक चीज अंदर जाती है। तो व्यर्थ को समाप्त कैसे करना, समर्थ स्थिति कैसे करना, समझ में आया? फिर भी आपके मन में किसी के पास कोई प्रश्न है तो बताओ, आपका भी सुनना चाहिए ना, क्योंकि 5 मिनट रखा है, ठीक है बताओ। हाँ बताओ, आएगा। हाँ, अभी इसका सॉल्यूशन चाहिए आपको, है ना, इसका सॉल्यूशन। रात को सोते समय मोबाइल की मुरली नहीं, प्रिंटेड मुरली, पुरानी भी हो, वो पढ़ते पढ़ते सो जाना। लेकिन आप अकेले हो तो लाइट जलना पड़ेगा, तो दूसरों को डिस्टर्ब होगा, अकेले हो तो लाइट जलने दो, अगर नहीं तो बाहर आके बैठ के पढ़ करके फिर जाके सुनना, प्रिंटेड ना, वो नहीं करना ना, वो नहीं होगा। हाँ, ये सब देखा हमने अपने जीवन में प्रैक्टिस किया, क्यों पढ़ना, क्यों पढ़ने में एक आंखें काम करती है, आंखें पढ़ते पढ़ते भारी हो जाती है और मन बुद्धि भी, पढ़ना भी शब्द पढ़ना, आपको मन बुद्धि भी काम करता है, आंखें भी काम करती है, तो भारी, फिजिकल एंड मेंटल दोनों चाहिए। तो इसलिए कहा मोबाइल में नहीं, प्रिंटेड पुराने हो तो पढ़ते पढ़ते सो जाओ, एक करके देखना। तो इन सब का सॉल्यूशन चाहिए, अगर वर्णन करने जाओ तो बहुत कुछ है, ये छोड़ो ये छोड़ो तो सब नहीं हो सकता है, इंस्टेंट एक गोली खा दो सब निवारण, ठीक है, ये करके देखना। और बताओ, ठीक है, अभी 5 मिनट यो कहा जी, बहन जी कुछ सुनाती है बताओ, नहीं थैंक यू, और किसी के पास है, आपका भी सुन पूछना चाहे ना, नहीं तो 5 मिनट योग करते रहे, सफेद लाइट और शांत होके कौन क्या करेंगे योग, सर्वशक्तियों का चिंतन, नहीं तो सुना तो यहां ही चला जाएगा। हाँ वो सुनाता हूं, हाँ वो ऑटो शक्ति बताता हूं, अभी दोबारा बताता हूं, फिर 10 मिनट है, 5 मिनट पूरे, और उसमें से कौन 5 ऑटो शक्ति रिपीट करता है तो वो सत्युग में जरूर आएंगे। उसको कहेंगे ना, उसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति। बाबा इन्होंने एक्यूरेट, उसको कहते बहुत होशियार है, संस्कृत में कहते एक पार्टी द्विपाटी त्रिपाटी, किसी बच्चे को एक दफा बताओ सब याद रहता है, बहुत ब्रिलियंट है, होशियार है, एक दफा को 10 दफा बताओ अरे बुद्धू इसको याद ही नहीं रहता है ना। तो नंबर 1 नंबर 2 है, तो आप भी यहां ही नंबर मिलेगा। तो एक है शिव बाबा, पवित्रता का सागर है, ठीक है, शिव बाबा शांति का सागर है, शिव बाबा आनंद का सागर है, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, शिव बाबा दुख हरता सुख करता है। ये कैसे क्या, इसको एक एक घंटा आप सोच सकते हैं, सोचना है, इस शक्तियों के गहराई में जाना है। फिर शिव बाबा कौन, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है और भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है, और 8वां दिव्य बुद्धि दाता है, ठीक है। अभी एक एक शक्तियों को आप पहले रिपीट करो, फिर आराम से योग में बैठे उसके गहराई में जाओ, बाबा आप कैसे दिव्य बुद्धि बनाते हो, आप कैसे भाग्य बनाते हो, आप शांति का सागर, शांति अशांति क्या चीज है, ये कैसे शांति का सागर, इसके अंदर जाओ, शक्ति के चिंतन करो। अभी भी मेजेला 90% को पता ही नहीं होगा शांति का सागर क्या है, पूछेंगे तो पता चलेगा शांति क्या है, शांति माना आवाज नहीं, अभी देखो इधर कोई आवाज नहीं, इसको शांति कहेंगे, तो शांति क्या है, शांति माना थॉटलेस नहीं है, अच्छे विचार, ज्ञान का चिंतन, आत्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन चलता है, इसका नाम है शांति। तो मन में कुछ अगर अशांति, इधर बैठे बैठे देहधारी का, परिवार का, बिजनेस का विचार करते हो, अशांति। अगर यहां बैठ के, बाबा ने 2-4 दिन पहले कहा था, यहां बैठ के अशांति फैलाते हो, कहते विश्व को शांति देना चाहते हो, लेकिन घर में क्या हुआ, बिजनेस का, परिवार का चिंतन कर रहे हो, तो अशांति फैलाते हो, पता नहीं चलता है। तो एक्सप्लेन करेंगे तो पता चलेगा ना। तो शांति क्या, अशांति क्या, तो एक एक शक्तियों के चिंतन में जाओ, गहरा में, ठीक है, कर सकते हो, 5 मिनट है, ओके, देख लो कौन कौन कर सकता है। सुनना सहज है, करना मुश्किल है, कठिन है। तब बाबा ने आज का मेहनत है यही पुरुषार्थ है।